मैं हूं डॉक्टर खलील। प्राइम इंस्टीट्यूट की वीडियो सीरीज़ मुकालमा सबके साथ में और हमारे मेहमान हैं आज शाहिद महमूद। शाहिद महमूद इकोनॉमिस्ट हैं जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है उसके साथ वाबस्ते हैं आजकल ये। शाहिद महमूद ने गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में दोनों में काम किया हुआ है, दोनों का एक्सपीरियंस है उनके पास। तो आज हम शाहिद महमूद के साथ प्राइवेटाइजेशन, निजकारी और इसके साथ जो मसाइल जुड़े हुए हैं प्राइवेटाइजेशन की के रास्ते में जो रुकावटें मौजूद हैं, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाती, पिछले कोई 30-40 साल से तो प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है लेकिन उसका नतीजा जो है कभी निकल नहीं पाता। हिंदी की एक कहावत है, राजा व्यापारी प्रजा भिखारी। जो हुक्मरान है, जो हुकूमत है, अगर वो बिज़नेस करेगी तो सीधी सी बात है जो प्रजा है, जो वहाँ की सिटीजनरी है, जो वहाँ के शहरी हैं, लोग हैं वहाँ के, उनके लिए ज़िंदगी जो है मुश्किल हो जाएगी। फिर हम आते हैं शाहिद महमूद की तरफ और उनसे पूछते हैं कि ये जो हिंदी कहावत है कि राजा व्यापारी और प्रजा भिखारी, तो इस ये प्राइवेटाइजेशन पर भी बिल्कुल सादिक आती है ये बात इसी तरह की? तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। जी शाहिद साहब,
बिल्कुल कहावत तो हमारा जो पस मंज़र है, जिस तरह हुकूमत ने, हमारी हुकूमतों ने ओवर द ईयर्स इक्तसाद को जो है चलाया, इकॉनमी को मैनेज किया, तो ये बिल्कुल सादिक आती है उस पर बात जो आपने बात की है। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि अगर आपने किसी ने बिज़नेस चलाना हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिज़नेस एक्यूमन की।
सही।
अब जिसको बिज़नेस कभी ज़िंदगी में जिसने पढ़ी ना हो लेकिन वो एक टेस्ट की बुनियाद पे या एक कोर्स की बुनियाद पे आप उसको ये कह दें कि जी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अरबों के जिसमें सरमाएकारी हुई हो
जी
और अरबों के करोड़ों के उसके असासे हो, तो ये एक बड़ी ज्यादती है और ये ज्यादती जो है ये पाकिस्तान के शुरू से होती आ रही है और ख़ास तौर पर लास्ट 50 ईयर्स, आखिरी 50 सालों में
जी
हर अशरे में जो है हम देखेंगे कि इसमें जो जिनका हम कहते हैं ना इंटरेस्ट ग्रुप, जिनके अपने मखसूस तबके होते हैं और इनमें जैसा कि आपने जिक्र किया वो अशराफिया, सियासी अशराफिया होगी, ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया होगी, फिर अदालती अशराफिया होगी, फिर मिलिट्री
अस्करी
अशराफिया होगी, तो इनके अपने मुफाद जो है वो इतने इससे इंटरवाइन हो गए, जिसे हम कहते हैं गटमड हो गए कि अब उनके लिए ये एक मसला बन गया कि यार हम इसको क्यों जाने दें। तो अब बात जो है वो प्राइवेटाइजेशन से मेरे ख्याल में आगे निकल गई। अब प्राइवेटाइजेशन इतना बड़ा मसला नहीं है जितना इनका ये मसला है कि ये हम अपने मुफाद क्यों छोड़े। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बड़ा मसला प्राइवेटाइजेशन में ये है कि ब्यूरोक्रेट आपका वो कहेगा कि मैं तो इनके बोर्ड्स पे बैठता हूँ। अब मिसाल के तौर पर OGDCL का बोर्ड है, उस पर जो है ब्यूरोक्रेट जो होगा ग्रेड 21-22 का, वो उसका बोर्ड मेम्बर होगा, उसमें उसको फ्री पेट्रोल, फ्री गाड़ी, और फिर यह है कि जो मैंने सुना है एंड आई एम श्योर इट्स ट्रू कि OGDCL की जो बोर्ड की रिम्यूनरेशन होती है एडमिटी की, दैट्स इन डॉलर्स, नॉट इवन इन रुपीस।
सारी SOEs की
नहीं नहीं मैं सब कुछ है, मिसाल अच्छा। OGDCL की मैंने
जी जी
या SNGPL वगैरह,
अच्छा
तो इनकी अच्छी खासी रिम्यूनरेशन है। अब मैंने जो सुना है वो ये है कि कुछ की जो है वो डॉलर्स में होती है और फॉरेन करेंसीज,
अच्छा।
तो इतना इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और ख़ास तौर पर पोस्ट रिटायरमेंट, अगर आप ये भी अब देखें क्योंकि वो बात से बात चल निकली है, आप देखें कि अभी जो हमारा जो ये इंतज़ामी सेटअप है इसमें आप ये देख लें कि कितने रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं,
अच्छा,
तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुफाद का कितना वो टकरा हुआ है। तो प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल जी मैं उसके हक में हूँ, होनी चाहिए और उस पर आगे मजीद भी बात कर लेंगे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का अब मसला बड़ा बना हुआ है। इतना बड़ा मसला प्राइवेटाइजेशन का नहीं है जितना मुफादात का है और अब असल मसला ये है कि इनको ये जो कुछ अशराफिया के हमने नाम लिए हैं इनके मुफादात इनको कैसे बताया जाए कि आपको इनसे हटना पड़ेगा क्योंकि ये छोड़ेंगे
जी। आपने जैसे कि अच्छा थोड़ा सा ना इस पे ही रुकते हैं और फोकस करते हैं, ये बात जो है मतलब बाकी लोगों ने भी मतलब ये बात होती रहती है कि जो ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी है उसके मफादात जुड़े हुए हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, ठीक है ना। अच्छा ये जो आपने जैसे बताया कि मुख्तलिफ जो SOEs के बोर्ड्स हैं उसमें ये मेंबर होते हैं और उसमें फिर इनकी प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स हैं और उसके फ़ायदे हैं, सारा कुछ है, बल्कि पोस्ट रिटायरमेंट भी हैं उसके बाद बता रहे हैं कि अच्छा क्या ये, एक तो पहली चीज़ इसमें ये कि जब ये सर्विस में होते हैं उस वक्त भी ये मेंबर हो सकते हैं एसओईज के बोर्ड्स के, या जब ये रिटायर हो जाते हैं उस वक्त होते हैं ये बोर्ड्स के मेंबर एसओईज के?
नहीं, दोनों वक्त, सर्विस में भी और सर्विस के बाद भी, दोनों उसमें हो सकते हैं। ये बस वो वही बात है, वही पावे वाली बात है कि जिसका जोर ज्यादा हो और जिसकी सिफारिश ज्यादा हो। तो जिसका जोर ज्यादा हो, सिफारिश ज्यादा हो, अब हम मिसाल के तौर पे हमें पता है कि सिविल सर्विस में पीएएस जो है, डीएमजी, फॉर्मर डीएमजी,
जोर है,
उसका जोर है। अब आप देखेंगे कि हुकूमत में जितने भी सेक्रेटरीज हैं इनके डिपार्टमेंट्स के, तकरीबन 47 के 45 हैं इस वक्त।
अच्छा,
तो वो ज्यादातर जो है
फेडरल
सेक्रेटरीज हैं, वो ज्यादातर इसी पीएस ग्रुप के हैं।
अच्छा,
कॉमर्स पे पीएस ग्रुप का होगा, फाइनेंस वाला तो हमेशा ही पीएस ग्रुप का होता है। ठीक है जी, इस तरह की पावरफुल मिनिस्ट्रीज, फिर इंटीरियर में पीएस ग्रुप का होगा। तो इवन रेलवे में, जिसे हम वो कहते हैं ना कि जी थोड़ा सा कमजोर इदारे हैं और इस पे कोई पोस्टिंग, तो वो पोस्टल सर्विस और रेलवे में भी पीएस का आपको मिलेगा। इससे अभी रेलवे का जो सेक्रेटरी इससे पहले था वो पीएस का था, उससे पहले भी पीएस का था। तो ये होते हैं वो अपने लिए। मिसाल के तौर पे आपको एक मैं मिसाल देता हूँ। आई नो पीएस पर्सन, पीएस सिविल सर्वेंट, वो ग्रेड 21 में है। वो अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो उनका बोर्ड है वो उसका मेंबर है, ही इज सर्विंग नाउ।
अच्छा, सर्विस भी है, वो भी तो तो दोनों जगह पे एक तरह से उनको जो अगर सैलरी वो भी मिल रही है और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिल रही है।
जी बिल्कुल। अब मैंने कहा ना आपको ये मिसाल दी, तो उसमें अब जिसकी मैंने बात की, तो उसके पास 5 गाड़ियां उसके डिस्पोजल पे है, अनलिमिटेड पेट्रोल है,
5 गाड़ियां दोनों तरफ से मिला
के जो जॉब,
बीइंग अ मेंबर ऑफ द एसओई,
हाँ जी, दैट नेशनल हाईवे अथॉरिटी।
अच्छा,
4-5 गाड़ियां उसके डिस्पोजल पे है, पेट्रोल अनलिमिटेड है। बीच में वो 2-3 अभी तक, एक साल पहले अपॉइंट हुआ था, बीच में अभी तक वो 2-3 फॉरेन टूर्स भी लगा चुका है, जिसमें उनकी रिमुनरेशन फिर डॉलर्स में होती
है, डीए वगैरह जो होता है।
आज तक ये नहीं पता कि फॉरेन टूर्स लगा के कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के नाम पे कि आखिर उसका फायदा क्या हुआ। तो देखिये, कहने का मकसद वही है कि इनके मुफादात इतने स्ट्रॉन्गली इन चीजों से जुड़े हुए हैं कि ये चीजें अपनी जगह पे रहे, प्राइवेटाइज ना हो या इनके हाथ से ना जाए। क्या प्राइवेटाइजेशन वाला मसला नहीं रहा? प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान में, जो एटलीस्ट जो इनका वो सोच वाला तबका है, फिक्र वाला तबका है, इंटेलेक्चुअल सर्कल है, उसमें आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि उसके खिलाफ हों प्राइवेटाइजेशन के। मसला प्राइवेटाइजेशन का नहीं है, मसला मैंने जैसा कहा ना, प्राइवेटाइजेशन से आगे चला गया कि अब इनके मुफादात को जो है वो किस तरह टैकल किया जाए, इनको किस तरह साइडलाइन किया जाए कि यार तुम इन चीज़ों को छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगे। और फिर दूसरी एक और बात, सिर्फ ये अशराफिया नहीं है, आप नीचे भी चले गए, वो कहते हैं ना आवेगा आवे बिगड़ा हुआ है, आपकी ये देख ले ट्रेड यूनियन है,
सही
मिसाल के तौर पर रेलवे की ट्रेड यूनियन या पोस्टल की ट्रेड यूनियन या इधर ओजीडीसीएल
की
ओजीडीसीएल की यूनियन है, वो कैसे वो बर्दाश्त करेगी कि ये चीज प्राइवेटाइज हो जाए? वो कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगी।
ब्यूरोक्रेसी को जो पोस्ट रिटायरमेंट और उससे पहले जब ये इन सर्विस भी हैं और जो एसओईज का अगर उनके बोर्ड्स का मेंबर बनाया जाता है, तो क्या इसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है? कैसे बनाया जाता है?
जी जी, लीगल फ्रेमवर्क तो मौजूद है इसमें, तो वो
क्या
नहीं
क्या,
है, वो,
क्या फ्रेमवर्क है? वो
फ्रेमवर्क जो होता है ये आपको मिल जाएंगे कुछ, तो वो खुद अपने, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आवे का आवे बिगड़ा हुआ है जैसे कि मैंने कहा
जी,
तो जिसका वो अपने लिए बना भी लेते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पे जो होता है वो रूल्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं
एसओईज के,
गवर्नमेंट के, गवर्नेंस के,
जी जी,
पूरी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव उसके जो है रूल्स ऑफ बिजनेस, और बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है। अभी ये हाल ही में हमारे यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर हसन और खुरम इलाही, उन्होंने इस रूल्स ऑफ बिजनेस पे बड़ी अच्छी रिसर्च की है, अभी रिसेंट ही है। तो उसमें आप देखें कि वो बड़ा वास्ट एरिया कवर करते हैं, उस वास्ट एरिया में जो है ये सारी चीजें जो है उसके अंडर आती हैं कि आपने किस तरीके से मिनिस्ट्रियां, प्रमोशंस और ये वो, फिर आपके सिविल सर्वेंट्स रूल हो गए 1973 वाले, अच्छा। उसमें अपडेट हुए हैं वो 2000-2001 में, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई, ओवरलैप काफी करती हैं, लेकिन ये सारी चीजें उसमें मौजूद है, ये किसी भी वक्त उसका सहारा ले सकते हैं।
नहीं, मुझे जो चीज़ जो मैं समझना चाह रहा हूँ चीज़, और जो असल में कि अगर तो क्योंकि देखें ना, जब हम ये देख लेंगे कि वो लीगल फ्रेमवर्क क्या है जहाँ से ये आ जाते हैं, जिसके ज़रिए या जो जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को, अगर उस लीगल फ्रेमवर्क को फिर चेंज किया जाए तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उनका इंटरेस्ट जो वेस्ट वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, तो वो जो फ्रेमवर्क है क्या सिर्फ रूल्स तो नहीं, जैसे अभी एक 23 में SOE पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने मंजूर की है, मैंने देखी है वो पॉलिसी, उसमें भी चीज़ें सारी इस तरह की मौजूद है, लेकिन उसमें भी है कि बनाया जा सकता है बोर्ड मेंबर और ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, बल्कि है ही वो सारा कुछ यही ना। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि वो चीज़ शुरू कहाँ से हुई कि इनको, देखें ना, एक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक तो ये कि दो जॉब वक्त वक्त नहीं कर सकते
जी,
तो ये ठीक है, मतलब वो जॉब नहीं होती, डेपुटेशन पर जाते हैं ये लोग। तो SOE का एक, अगर फर्ज करें एक सिविल सर्वेंट जो है वो SOE का के बोर्ड का मेंबर भी है और वो जैसे वहाँ पे अपनी जॉब भी कर रही है, कैसे पॉसिबल है चीज़ें, क्या जो रूल्स हैं इसकी इजाज़त देते हैं और किसने अच्छा फिर एक चीज़ इसके साथ और जुड़ी, कौन अपॉइंट करता है
जी,
वो अथॉरिटी किसके पास है?
अथॉरिटी जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, कैबिनेट के पास होती है, क्या प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, सो ही कैन अप्रूव दैट, तो अप्रूवल उनके पास जाती है, फिर वो एस्टैब्लिशमेंट से आपको पता है वो एक नोटिफिकेशन आता है। बुनियाद इसकी डॉक्टर साहब ये है कि देखिए हुकूमत एक इदारा चला रहा है जिसमें उसके ज़्यादा शेयर्स है, इट्स द बिगेस्ट शेयर होल्डर, स्टील मिल हो गया, PIA हो गया, OUDCL हो गया, ठीक है, तो उसमें फिर जिसके बिगेस्ट शेयर होल्डर होता है उसी की मोनोपोली होती है जो उसको ओन करता है,
सही है।
सो ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरह किसी आम ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहा है, तो उन्होंने अपने काम को करवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को रखा होगा ना, ठीक है जी, तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो सिविल सर्वेंट्स हैं जो CSS के थ्रू आते हैं या फिर किसी और तरीके से कोई आ जाते हैं। बीच में इन्होंने थोड़ी वो की हुई है कि जी वो टेक्निकल कैडर उसे एक कहते हैं कि जी उसके थ्रू आ जाए ये MP1 MP2 स्केल MP3, लेकिन इशू जो है बेसिकली कंट्रोल जो होता है ना वही जो सिविल सर्विस के थ्रू आए होते हैं, CSS के थ्रू आते हैं, उन्हीं का होता है। मिसाल मैं देता हूँ प्लानिंग कमीशन में, इट्स अ प्योरली टेक्निकल एक इदारा है कि जी जो आपके प्लान बनाएगा, एक साल के तीन मिड टर्म हो गए, लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के प्लान बनाएगा, तो उसमें भी सेक्रेटरी जो होता है वो PAS का होता है, चीफ इकोनॉमिस्ट जो होता है वो सेक्रेटरी को जवाबदेह होता है, चीफ इकोनॉमिस्ट जो होता है वो उसमें सबसे बड़ा सबसे या बासर फर्द नहीं होता, उसमें उसका सेक्रेटरी होता है,
ठीक है,
तो सेक्रेटरी जो है उसको अगर उसकी कोई सजेशन आती है उसको काट कूट के वो साइड पे भी कर सकता है।
अच्छा मुझे, मैं फिर भी ना क्योंकि इस चीज़ पे अभी तक हमने जो वीडियो पहले रखी है, मतलब जिन लोगों के साथ बात की, मुकालमा किया है, उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, इसकी बात हुई है थोड़ी सी, लेकिन मैं चाहता हूँ इसी पर हम फोकस अपना रखें कि जो प्राइम मिनिस्टर है जब ये अप्रूवल देता है कि भाई इस सिविल सर्वेंट को इस SOE के बोर्ड में शामिल कर दिया जाए,
जी जी,
अच्छा वो प्राइम मिनिस्टर के पास वो पावर कहाँ से आती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा
हाँ।
वो अथॉरिटी उसकी लीगल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक तो मैं भी अखबारात में, तो ये चीज़ें अखबारात में भी नहीं आती हैं,
जी जी,
अच्छा दूसरी एक चीज़ जो है मैं देखता हूँ क्योंकि उस पर कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है, जैसे वर्ल्ड बैंक में भेजना है किसी को डेप्यूटेशन पे,
जी
सिविल सर्वेंट ही जाते हैं वो,
हाँ जी,
तो उसका तो इशू आता है अखबार में, वो पता भी चलता है, मैंने भी पढ़ा है, बाज़ औक़ात इतराज़ होते हैं और चीज़ें होती हैं, तो ये, लेकिन यहाँ पे जब SOEs के बोर्ड का मेंबर बनाता है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के पास वो अथॉरिटी या वो अथॉरिटी कहाँ से डिराइव कर रहा है?
वो कॉन्स्टिट्यूशन से और फिर रूल्स ऑफ बिजनेस से, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स ऑफ बिजनेस है और रूल्स ऑफ बिजनेस में फिर रूल्स है स्पेसिफिक कि अगर आपने इस तरह की कोई अपॉइंटमेंट वगैरह करनी है तो वो किस तरह करनी है, कौन से प्रोसीजर के तहत करनी है,
अच्छी,
और फिर उसमें कुछ सब रूल्स हैं हर इदारे के जो है, OUDCL के अपना एक एक्ट होगा
जी,
स्टील मिल का अपना एक एक्ट होगा और इदारों का अपना एक एक्ट होगा, तो उन सब को मिला के जो है बुनियादी तौर पे जो पावर जो ड्राइव करता है प्राइम मिनिस्टर
जी,
वो अपनी ड्राइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है जी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिर उसमें जो है कुछ इस तरह की शिकें हैं जो कि उनको बताती है, मिसाल के तौर पर रूल्स ऑफ बिजनेस की एक शिक है, और उसी रूल्स ऑफ बिजनेस में विद इन दैट, और ये बड़ी बहुत मोट अच्छी, जैसा कि आपने कहा कि ये चीजें हमें नहीं बताई जाती, बहुत सी चीजें मुझे भी अभी भी नहीं पता क्योंकि इट्स सच अ गवर्नमेंट के इदारों में काम करते हुए मुझे अभी भी नई नई चीजें पता लगती क्योंकि वो इतनी ज्यादा है, इतनी मोटी मोटी किताब
है, सही है, एस्ट्रा कोड
वगैरह हो गया ना जी, तो ये सारी उसी के अंदर है, तो उसी में से जिसको जब जरूरत पड़ती है तो वो उसमें से निकाल के जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है जी,
वो तो SOE पॉलिसी जो अभी 23 में अप्रूव की है ना गवर्नमेंट ने, अच्छा मैंने वो पढ़ी और पढ़ के मैंने कहा कि भाई ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें से आप मुझे कहें कि ये चीज़ चाहिए मैं निकाल दूंगा इसमें से, सब कुछ निकाला जा सकता है। अच्छा लेकिन ये जो है इसमें अगर ये देखिए ना, इसकी इसका मतलब है कि अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ रही है, पॉलिटिशियंस के कंधों पर। जो रूलिंग रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जो कैबिनेट है, यही लोग अप्रूव कर रहे हैं ना, जिम्मेदार तो ये है ना फिर।
जी बिल्कुल,
ब्यूरोक्रेसी तो नहीं है ना। अच्छा, क्या इनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्यों ये? अच्छा देखें, मैंडेट पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है, मैंडेट वो काबीना के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है कि भाई आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है, आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें आप फिर ये कि जब आपको पता है कि भाई ये लोग हैं, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट बन चुके हैं ब्यूरोक्रेसी के, और ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे, तो क्यों नहीं इस मसले को रिजॉल्व करते? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि क्यों ये ऐसे रूल्स ऑफ बिजनेस इनको तब्दील कर दिया जाए कि जो एसओईज हैं, मैं इसी मतलब इस दायरे के अंदर रहते हुए क्या किया जा सकता है उसकी बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ। वैसे तो हम प्राइवेटाइजेशन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब एक तरह से किससे ही ख़त्म करें ना ये जो है सारा, तो ये एक हाँ ये जो है मतलब अगर तो ये रूल्स ऐसे चेंज कर दिए जाएँ कि भाई आपने एसओई का जो बोर्ड बनना है, आपने इंडिपेंडेंट लोग लेने हैं, बाहर से लेने हैं, प्राइवेट सेक्टर से लेने हैं, आपने टेक्नोक्रेट्स लेने हैं, आपने ब्यूरोक्रेसी में से लेने ही नहीं, तो ये बात ही ख़त्म हो जाएगी।
देखें जी,
क्या ऐसा मुमकिन है
खलील साहब, अगर आप रूल्स पढ़े ना, मिसाल के तौर पे स्टॉक कोड पढ़े, तो आप कहेंगे कि यार इससे अच्छा कोड और इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी तो आपको यहीं नहीं सकती।
बिल्कुल सही है।
इट्स नॉट अबाउट कोड्स, इट्स नॉट अबाउट रेगुलेशंस, इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटिंग देम। आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की ना, तो अभी आप मुझे बता सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को कौन हेड कर रहा है, कौन है
प्राइवेटाइजेशन कमीशन?
हाँ जी,
फवाद हुसैन फवाद मिनिस्टर जो
है, और वो हाँ वो मिनिस्टर हो गया
प्राइवेटाइजेशन,
और इससे पहले वो क्या थे?
ब्यूरोक्रेट हैं ना,
ब्यूरोक्रेट थे, ठीक है। सो अब देख ले, यहीं पे तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना, कि यार यू आर अ ब्यूरोक्रेट और फ्रॉम द पावरफुल पीएस ग्रुप, हाउ डिड यू विद इन फ्यू ईयर्स बिकम अ मिनिस्टर देन? ठीक है, अब ये नहीं हो सकता, यू वुड बी सम अ पर्सन वुड बी वेरी नाइव कि वो कहेगा कि नहीं, वो आके आते साथ ही वो झाड़ू फेरेगा वही बंदा, और अपने ग्रुप की पावर कम कर देगा। मैं मतलब मैं उनकी इंटेंशन पे जो है कोई वो नहीं करता, फवाद हसन फवाद साहब जो है वो बड़े अच्छे बंदे होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इशू ये नहीं है। इशू ये है कि यू आर नॉट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, जैसा कि हमने कहा ना, इट्स अबाउट होल इंटरेस्ट ग्रुप। अच्छा, दूसरी बात आप ये कहते हैं इंस्टीट्यूशन, दूसरी बात आप ये कहते हैं पॉलिटिशियन, या पॉलिटिशियन नहीं, यहाँ पे मतलब ये सबसे पावरफुल इदारा है, वी नो कि यहाँ पे कितने साल फोर्सेस की हुकूमत रही है ना, मार्शल लॉ रहा है, ठीक है जी, तो वो क्यों नहीं करते? एंड दे आर द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन। इसे कहते हैं जी, वो अंग्रेजी में आपने एक खलील साहब वो सुना होगा, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। देखिए, पॉलिटिशियन अगर आता है या फिर कोई मिलिट्री का जनरल आता है, ठीक है, उन्होंने भी तो अपने काम निकलवाने होते हैं। अब पॉलिटिशियन आएगा, उसने पीएसडीपी के फंड जो है वो खर्च करने होते हैं, पुल बनाने होते हैं, गलियां पक्की करनी होती है, तो वो किसके जरिए करवाएगा? वो इन्हीं के जरिए करवाएगा। तो फिर ये उनसे जो है, जब इनके जरिए करवाएंगे तो इनसे फेवर भी लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे?
जी जी।
तो देखिए सर, उसमें फिर ये होता है कि इट्स नॉट डिफिकल्ट करने को, ये एक हफ्ते में हो सकता है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि इन सब के मुफादात जो है ना, ये एक दायरा है। अब आप एक दायरा बनाएंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं इनके हाँ उनके जो है वो, आप एक वो डायग्राम सी बनाएंगे ना, एक खाका, तो उसमें आप देखेंगे कि वो अक्सर होता है ना, एक वो कमान के जरिए, तीर के जरिए एरो होता है कि जी एक इधर से जा रहा है, इससे अटैच है दूसरा, इधर से आएगा। तो आप ये अशराफिया के बड़े बड़े ग्रुप्स में लाएंगे ना, तो इनके सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
पूरा एक नेटवर्क बना,
पूरा एक नेटवर्क है। तो इसीलिए आपके यहाँ पे रिफॉर्म जो है वो इसलिए मुश्किल है, क्योंकि इनमें से एवरी वन ऑफ देम इज सेट टू लूज इट एंड लूज बिग टाइम।
जी जी।
अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसा कि आपने कहा ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप आज ये लगा दे पाबंदी कि एक रिटायर्ड बंदा,
हाँ,
अगर उसने दोबारा हायर होना है, तो वो अपनी वो जो दूसरी सर्विस वाली है ना, वो पेंशन ले सकता है ना, उसकी जो फैसिलिटीज है वो ले सकता है,
और कोड में ऐसा,
हाँ जी, और सिंपली जो ये वो है जिस जगह पे काम कर रहा है, सिर्फ उसकी वो मॉनेटरी बेनिफिट्स अवेल कर सकता है, तनख्वाह अवेल कर सकता है। मैं देखता हूँ कि कितने प्राइवेट लोग आते हैं काम करने, ठीक है, लेकिन वो करते नहीं है। अब आपने हर जगह खुद रास्ता खोला हुआ है।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि आपको याद होगा कि मेरे ख्याल कितने साल हो गए, वो कमर जमान जो थे चेयरमैन नैब बनाया था, जिनको पीपल्स पार्टी के दौर पर बने थे ना,
कमर जमान चौधरी,
अच्छा, वो जिनका आया था कि वो मिलिट्री पेंशन भी ले रहे थे और इधर से भी सैलरी ले रहे थे, सारा कुछ चल रहा था। तो लेकिन फिर ये जो बात है ना, मैं एक तरह से देखें, जो इस वक्त मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, اگرچہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ذمہ داری دیکھنا نہیں ڈال سکتے ہم کسی پہ, لیکن جو منسٹر فار پرائیویٹائزیشن ہے ان کو منسٹر کس نے بنایا؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بنایا.
جی جی,
ذمہ داری تو ان پہ آئے گی نا ایک طرح سے. بلکہ اگر آپ سمجھیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی تو ذمہ داری تو جو پرائم منسٹر ہے, کیبنٹ ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے, اس پہ آنی تھی نا. ان پہ تو ذمہ داری نہیں آنی تھی. بیوروکریسی کو اگر کوئی بھی بینیفٹس دے رہے ہیں, عہدے دے رہے ہیں, میراث دے رہے ہیں, تو پولیٹیشینز دے رہے ہیں.
جی, جو حکومت کرنے والے ہیں.
جی بالکل, تو ذمہ داری تو ان پہ ہے نا, پھر ان پہ تو نہیں ہے.
جی, ذمہ داری ان پہ ہے.
ویسٹڈ انٹرسٹ ان کے ہیں, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس چیز کو, لیکن ان کے انٹرسٹ تو دیکھیں نا. آج وہ رولز اپنے رولز چینج کر دیں, نہیں بنائیں گے جی. کسی ایس او ای کا کے بورڈ کا ممبر کوئی بیوروکریٹ نہیں بنے گا, بات ختم ہو گئی.
دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کو کہا نا, اٹس اے ویری کمپلیکس بزنس فار دا سمپل ریزن کہ یہاں پہ ہمارے جو, اور پھر میں نے کہا نا, یہ سارے بات آتی ہے پھر, اور آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, یہ معاشرے کے بگاڑ پہ آتی ہے. ٹھیک ہے
جی,
معاشرے کا بگاڑ اس طرح ہے کہ آپ کا پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ آتا ہے, وہ یہ کہہ کہ وہ یہ نہیں اسٹڈی کرتا کہ یار پاکستان کے مسائل اور پاکستان کے اقتصاد کے کون سے مسائل ہیں.
صحیح ہے, بالکل صحیح.
وہ صرف اس کو, ابھی بھی آپ دیکھ لیں, الیکشن ہونے والے ہیں, آپ ان کے ریفارم ایجنڈا اٹھا کے دیکھیں, آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں کون سی ایسی نئی بات ہے کہ جو 40 سال 30 سال پہلے وہ یہ گھسے پٹے نہ رہے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے نیت پہ. آپ کی نیت جب یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یار مجھے کسی طرح کرسی مل جائے, باقی دیکھی جائے گی, تو جب آپ اس نیت سے جاتے ہیں کرسی پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر آپ کو رپورٹ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. جو رپورٹ کرے گا وہ آپ کو آگے سیکرٹری رپورٹ کرے گا, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی بیوروکریٹ آ کے رپورٹ کرے گا. وہ آپ کو کہے گا سر یہ ایسا ایسا ہے, بس اس طرح کر دے, یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے کہنا ہے سو بسم اللہ, بھائی یہ تو بڑی ریفارم کی پروپوز ہے. بٹ یو وڈ نیور گو ان ڈیپتھ, دے وڈ نیور گو ان ڈیپتھ کہ یار اچھا یہ مسائل تو جو ہے 50 سال سے چلتے آ رہے ہیں, 50-60 سال سے, تو یہ کیوں چلتے آ رہے ہیں؟ اب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں نا, ہم نے ایس او ایز پہ گفتگو کی, ان کے رولز پہ گفتگو کی, اور اس کی بنیاد کے یہ کہاں سے خرابی آ رہی ہے. اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو جو ہوتی ہے وہ کیبنٹ لیول پہ نہیں ہوتی. کیبنٹ لیول پہ یہ ہوتی ہے کہ ایک پریزنٹیشن پاور پوائنٹ ہوتی ہے, اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اتنا کم تھا سر, اگلے ہفتے جو ہے, اگلے سال جو ہے فسکل ایئر, ہم اس میں 100 بلین کا اضافہ کر رہے ہیں, 150 بلین کا. تو وہ بھی کہتا ہے پرائم, واہ کہتا ہے یار یہ تو ترقی آئے گی, میرا نام بڑھے گا. لیکن دے نیور گو انٹو ڈیٹیل کہ اچھا یار یہ کس چیز پہ آپ خرچ کریں گے, کون اس کو چلائے گا, اور جو چلانے والے ادارے ہیں ان میں کون بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, تو سر جب تک یہ مفادات کا ٹکراؤ, اور پھر دوسرا یہ جو اپنی سوچ کا بگاڑ, میں کہتا ہوں پاکستان میں لوگ کہتے ہیں اس چیز کی کمی, اس چیز کی کمی, میں کہتا ہوں جہاں تک ایٹ لیسٹ اکانومی از کنسرن, پاکستان کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ جو ہے وہ ٹریڈ یا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ نہیں ہے, پاکستان کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہے. سوچ نہیں سکتے. تو سر یہ چیزیں جو ہے پولیٹیشن آپ کا اس وقت جب تک وہ ہوگا, یہ اس وقت صحیح ہوں گے جب پولیٹیشن جو ہے اپنی کرسی سے یہ نہیں کہے گا کہ یار مجھے کرسی چاہیے, وہ کہے گا کہ میں آیا ہوں, میں نے یہ بگاڑ ٹھیک کرنا ہے, تو تب یہ چیزیں صحیح ہوں گی. اور وہ ہمارے انفارچونیٹلی بڑے افسوس کی بات ہے, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے ایک کسی ایک جماعت میں کوئی ایک پولیٹیشین ایسا نظر نہیں آیا. یا پھر آپ دوسری طرف بھی دیکھ لیں کہ جو زور رکھنے والے ہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ, خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اس طرف بھی کوئی ایسی وہ نہیں ہے.
کہ بعض اوقات فوج آتا ہے ملکوں میں, ایسا بھی ہوتا ہے, وہ آتے ہیں اگر ماشاء اللہ لگتے ہیں, کوئی فوجی گورنمنٹ آ جاتی ہے, کچھ نہ کچھ تو کر جاتے ہیں نا وہ. ہمارے یہاں تو کسی طرف سے بھی کچھ نہیں ہوتا نا,
کچھ نہیں.
اچھا میں جس تھوڑا سا جس پوائنٹ پہ نا کہ ایز فار ایز فکسنگ آف دا ریسپانسبلٹیز کنسرنڈ, تو رسپانسبلٹی بیوروکریٹ پہ نہیں آتی. اب یہ سیاست دانوں کو سوچنا چاہیے کہ ذمہ داری ان پہ آ رہی ہے, مینڈیٹ انہیں ملا ہے, کانسٹیٹیوشن انہیں پاور دے رہا ہے, بیوروکریسی کو نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بیوروکریسی کو جو بینیفٹس بھی دیتے رہے, جو میراث دیتے رہے, ذمہ داری ان پہ ہی آئے گی. تو یہ ایک طرح سے ویسٹڈ انٹرسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پریکٹیکلی ان کا بنا ہوا ہے, لیکن جو پولیٹیشنز ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. کہ بلکہ ابھی آپ ایک بین پڑھی تھی کچھ دن ہوئے خبر, لاہور میں ایک نئی جی او آر بن رہی ہے.
جی,
کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے اس کو کر سکتی ہے, کیسے بنا سکتی ہے, اور کیا پولیٹیشین جی دے رہے ہیں نا, بجٹنگ جو اس کے لیے ہوئی ہوگی, وہ جو چیف منسٹر ہے اور جو کنسرن سمجھو منسٹر ہوگا وہی کر رہا ہے نا, بیوروکریسی نے دے دی ہوگی. بھائی بیوروکریسی سے اتنی سینس تو ان کو ہے نا, اس کے لیے دیکھیں نا کوئی بڑا نالج تو نہیں چاہیے کہ جی آپ کے پاس اتنی جی او آر ہے. پہلی بات تو پہلی جی او آر ختم ہونی چاہیے, وہ ڈاکٹر ندیم الحق جو پائٹ کے وائس چانسلر ہیں, کتنے سالوں سے میرا خیال ہے 2-3 دہائیاں ہو گئی ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جی او آرز ختم کریں.
जी बिल्कुल ठीक है ना। वो कोर्ट में
बल्कि मुझे आपकी वही सात फॉर स्टडी भी याद आ जाती है, प्लॉटिस्तान वाली भी।
जी जी तो वो देखें सर, उसमें अगेन मैं आपसे दोबारा यही कहूंगा, अब जो जितनी मेरी समझ बूझ है उसके मुताबिक, अब देखिए वो पॉलिटिशियन होता है ना, वो जाता है लोगों के पास वो वोट लेने, उनके दरमियान में हर रोज बैठा होता है, उसको पता होता है यार कि आज तो ठीक है मेरी मेरा इख्तियार है, लेकिन इतने वो सयाने होते हैं उनको पता होता है कि यार मेरा हमेशा इख्तियार नहीं रहेगा, कल को मैं सीट से बाहर भी हो सकता हूँ, कल को हमारी हुकूमत नहीं भी होगी, फिर मैं क्या करूँगा। क्योंकि हमारे लोगों के ज़्यादातर मसाइल जो होते हैं ना डॉक्टर साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो होते हैं थाने कचहरी और ये छोटे मोटे मसाइल कि यार इधर मेरे बच्चे को इस नौकरी पर लगा दो, इस नौकरी पर लगा दो। पॉलिटिशियन जो होता है, चले वो जब इख्तियार में होता है वो तो आराम से थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी कर सकता है, लेकिन जब इख्तियार से बाहर होता है, उनकी हुकूमत नहीं होती, तो फिर वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा इसी ब्यूरोक्रेसी के पास इन मसाइल को हल करने। तो उसको बना के रखनी पड़ती है अपनी पॉलिटिकल करियर के लिए भी। ये नहीं होता, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग उसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन जो होता है, आप पॉलिटिशियन के साथ बैठे ना, मेरे अपने फैमिली में पॉलिटिशियंस हैं, तो मैं अभी एक महीने पहले भी गया था गाँव, उनसे मैं बैठा हुआ था, मेरा कज़न है वो खड़ा हो रहा है, उसके लिए इस बार वो खड़ा है सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए अपने हल्के से, तो मेरी उससे यही बातें हो रही, तो वो यही कह रहा है, कहता है यार ऐसा नहीं है कि हमें समझ नहीं है कि इन चीज़ों के मसाइल किधर बने हुए हैं और कहाँ पे हैं, कहते हैं हमें समझ है, कहते हैं बट यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि हमें हर रोज़ जो है लोगों में बैठना पड़ता है, हर रोज़ जो है हमें मसाइल आते हैं। वो कहता है हम में आज तक, कहते हैं मैं हर रोज़ बैठता हूँ और वो सुबह सवेरे उजरे में लोग अच्छे खासे आए हुए थे, वो कहता है कोई भी ये मसला लेके नहीं आता कि जी कानून बदले ठीक है और ये जो है शाही राज जो है या वो ख़त्म करें, कहते हैं मुझे आज तक एक बंदे ने भी नहीं कहा, कहते जो आता है वो कहता है मेरे बच्चे को जो है नौकर करो ठीक है,
सही।
दूसरा कहता है कि यार उधर मुझे इधर मसला थाने में बना हुआ है, वो पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, ये सॉल्व करो। फिर तीसरा आएगा वो कहेगा कि इधर मेरा इस जगह पे मसला बना हुआ है, वो उससे पीए से या डीसी से बात करनी पड़ेगी, ये मेरा मसला हल कर, कहते हैं इसके अलावा कोई इनके मसाइल नहीं होते और वो इसी चीज़ पे वोट देते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे तो, कहते हैं मैं मजबूर हूँ, कहते हैं मैं जाके डीसी के पास बैठा होता हूँ या फिर किसी और के पास बैठा होता हूँ, कहते हैं मैंने सियासत करनी है तो इसीलिए करनी है, मुझे कोई वोट इस बात पे नहीं देगा कि मैंने कानून इस तरह बदलने हैं कि लोगों की जिंदगी अच्छी हो। मैं आपको एक सॉरी कैसा सुनाता हूँ, वली खान मरहूम जो थे वो पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों में शुमार, तो उन्होंने फिर सियासत को खैरबाद कह दिया। सियासत को खैरबाद उन्होंने क्यों कहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और ये इसी हमारी बात से जुड़ा हुआ। वो हार गए मौलाना हसन जान से,
अच्छा,
उधर चारसदा के हल्के, उनका बड़ा पावरफुल हल्का था। अच्छा, वली खान जो है वो क्यों हारे, वो उनके पास, उन्होंने फिर एक वक्त में तो वो पॉलिटिक्स करते थे, फिर वो तंग आ गए, उन्होंने कहा कि यार फिर इस बार जो है जब वो हारे, वो कहते हैं मैंने लोगों को ये कहना शुरू किया कि ये थाने कचहरी वगैरह के मसले छोड़ो, ये हमारा काम नहीं है कि आप लोगों के बच्चों को नौकरियां दें, हमारा काम है कवानीन बनाना कि ऐसा माहौल बने कि जिसमें नौकरियां पैदा हो सके और आप सबको मौके मयसर आ
सके।
ठीक है,
बात तो यही है,
बात यही है। कहते हैं कि यार जब मैंने ये बात शुरू की ना, मैं बुरी तरह इलेक्शन हार गया और जो मेरा अपोजिट था वो मौलाना हसन जान मरहूम, कहते हैं वो सारा दिन यही बातें करते, कहते मैं आऊँगा मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त बिजली, मुफ्त सब कुछ, आप सब के बच्चों को नौकरियाँ दूंगा, कहते हैं उसको धड़ाधड़ वोट पड़े। तो देखें बात वहीं पे आती है, एंड अगेन पीपल कैन डिसएग्री विद मी, मुआशरे के बिगाड़ पे आती है। जो हमारे पॉलिटिशियन है वो कोई आसमान से नहीं उतरे, वो इसी मुआशरे से आए हैं, वो भी मुआशरे की वो इस हवा सिमत को देखते हैं, उनकी सोच की सिमत को देखते हैं। तो पॉलिटिशियन ठीक है, उनका अपना मुफाद होता है, दे हम ये कह सकते हैं कि दे आर शॉर्ट साइटेड, ठीक है, लेकिन शॉर्ट साइटेड फॉर रीजन, एंड द रीजन इज के उनका जो है ये काम इसी तरह चलेगा।
देखिए ना शाहिद साहब, इसमें जो मेरा व्यू है कि देखिए एक साइकिल बन चुका है, अब तो पॉलिटिशियंस भी और लोग भी उस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखें कि ये शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस ही थे जिन्होंने ये चीज़ें अपने पास कर ली, जिन्होंने सरकारी दफ्तर हैं, थाने हैं और जो तमाम मामलात हैं जिसके लिए लोग उनके पास आते हैं, डिपेंडेंट बनाया है। मतलब मैं इसे इस तरह कहूँगा कि सियासतदानों ने लोगों को बाकायदा सोच समझकर अपना डिपेंडेंट बनाया
जी,
ताकि वो उनके पास आते रहें, उनको वोट देते रहें, उनके एक तरह से वो क्लाइंट बने रहें।
हाँ जी,
جس طرح ہوتا ہے اس طرح نا. اچھا اب جب انہوں نے اس طرح کر لیا ہے تو سیدھی سی, جبکہ چاہیے تو دیکھیں نا پولیٹیشنز کو تو چاہیے تھا ایک صرف مطلب قانون سازی ہی نہیں کرنی, لیجسلیشن نہیں کرنی, انہوں نے گورننس بھی کرنی ہے. اچھا سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بلکہ یہاں ہمارے یہاں ایک یہ کلیشے بن گیا ہے کہ جی وہ قانون سازی کا, بھائی کتنے قانون بنانے ہیں
ہر وقت
بھائی نا, ضرورت تو نہیں ہے نا, غلط ہے, غلط کلیشے بن گیا کہ قانون سازی کرنی. سب سے بڑا کام جو ہے وہ جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, گورننس ہے, گڈ گورننس ہے. تو انہوں نے گڈ گورننس کا تو بیڑا غرق کر دیا. اور کیا کیا انہوں نے ہر چیز کے لیے, یہ کام جو ہیں دیکھیں تھانے کا کام ہے روٹین میں ہونا چاہیے, کیا ضرورت ہے کسی کو ایم پی اے کے پاس جانے کی یا ایم پی اے کے یا ایم این اے کے پاس جانے کی. اچھا گلی میں سولنگ ہونی ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, کسی سرکاری دفتر کا مسئلہ ہے, برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہے, یہ چیزیں تو روٹین میں ہونی چاہیے. یہ ہے نا گورننس, یہ چیزیں روٹین میں کیوں نہیں ہوئی؟ ان لوگوں نے ساری گورننس کو ختم کر دیا بالکل, اور وہ ہر چیز اپنے اختیار میں کر لی. میں اسی لیے کہتا ہوں میں ذمہ داری سیاست دانوں پر ڈالوں گا, کیونکہ انہوں نے گورننس کا نام و نشان مٹا دیا, ہر چیز اٹھا کے اپنے پاس کر لی. تھانے میں اگر کسی نے جانا ہے, ایف آئی آر درج کرانی, کچھ بھی کرنا ہے, کہیں سے کچھ کرنا ہے, سب کچھ ان کے اختیار میں آ جائے. ان کے لوگ ایک طرح سے ان کے ڈیپینڈنٹ بنے رہے ہیں, ان کے محتاج بنے رہے ہیں, یہ پولیٹیشینز نے ہی کیا ہے.
جی میں اس سے میں آپ کی رائے سے اختلاف نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی پولیٹیشنز آر دیئر ٹو بلیم. اب اس میں دو چیزیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ دیکھیں پولیٹیشنز, ہم نے بات کی نا کہ وہ اپنی سیاست انہوں نے کرنی ہوتی ہے اور کسی طرح بھی ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. پاکستان کی جو بنیاد جب بنی تھی تو وہ پڑی تھی, وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بڑے ایک ایسے مخدوش قسم کے حالات تھے, بڑی انسرٹینٹی. تو اس میں آپ جب بنیاد کی بات کرتے ہیں نا کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا, اس میں پرائیویٹ سیکٹر واز ناٹ پریزنٹ ایٹ دیٹ
شروع میں, ہاں جی
تھا ہی نہیں,
بہت تھوڑا تھا,
بہت تھوڑا تھا. تو ادھر سے پھر وہ جو گورنمنٹ کے اس وقت ایڈمنسٹریٹو مشینری تھی پاکستان کے حصے میں آئی تھی, انہوں نے سارا کام جو ہے شروع میں چلایا, لیکن پھر وہ عادت بن گئی. اور آپ کی بات کہ پولیٹیشنز آئے, ملٹری جنرلز آئے, مارشل لاز آئے, تو ان میں سے کوئی بھی اس چیز کو کرپ نہیں کر سکا. اچھا اب آپ نے سیاست دانوں کی بات کی, میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی پاور کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں نا, وہ کیوں زبردستی اس چیز کو, پارٹ آف اٹ از کہ ہاں بالکل ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے. اگر مسئلے حل ہو گئے تو پھر سیاست دانوں کے پاس آئیں گے کون؟ بٹ پارٹ آف اٹ از کہ دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ یار واٹ دا ایشو از. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہمارے زیادہ تر مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا میں زیادہ تر مسئلے جھگڑے جو ہوتے ہیں اور ایون پورے پاکستان میں, وہ ہوتے ہیں زمینوں پہ.
ہے بالکل ہے,
ٹھیک ہے, پراپرٹی رائٹس نہیں ہے, اور اگر ہے بھی وہ انفورسبل نہیں ہے. اچھا میں اسی طرح ایک پولیٹیشین سے وہاں پہ بات کر رہا تھا, میں ان سے کہا یار کہ آپ یہ جو پراپرٹی رائٹس ہے اس کو انفورس کریں نا آپ.
جی
تو مجھے کہتا ہے یار یہ کیا ہے, واٹ از دس؟ وہ کہتا ہے اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا, آخر میں یہ کہتا ہے, اور لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس کی اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ یار یہ بھی کوئی چیز ہے اور یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو پارٹ آف اٹ از کہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ, کیونکہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے, ان کے ارد گرد بڑے پولیٹیشین کے آپ کے بیٹھے ہوں گے, وہ مداح سرائی کرنے والے کہ سر آپ نے بڑا زبردست کام کیا, یہ روڈ پکی کر دیا ہے, یہ گلی پکی کر دی ہے, یہ پل بنوا دیا, بس زبردست کام ہو گیا. لیکن ان کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ یار یہاں پہ اور بھی مسائل ہیں. اینڈ پارٹ آف اٹ جیسا کہ آپ نے کہا کہ خود ان کی ہٹ درمی ہوتی ہے, سوچ کی ہٹ درمی یہ ہوگی کہ وہ کہے گا کہ یار اگر یہ مسئلہ میں نے حل کر دیا,
میں بھی ہاں یہ بھی بالکل ہو سکتا ہے,
تو میرے پاس پھر آئے گا کون, میرے ساتھ بیٹھے گا کون؟
یہ ہے بالکل,
بالکل ہے. تو پھر دیکھیں وہی پھر وہ ایک وہ دائرے والی بات ہوگی نا. وہ ابن صفی نے ایک ناول لکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, موت نے وہ موت کا دائرہ, اسے کیا اس کا دائروں کا سفر,
دائروں کا سفر بڑا مشہور ہے وہ, تو
دائروں کا سفر. تو یہ دائروں کا سفر جو ہے یہ اسی اس میں ہے, موسٹ آف اٹ از ہٹ درمی, سوچ کی ہٹ درمی کے مسئلے حل نہیں کرنا
چاہیے,
کیونکہ ان میں ان کا اپنا پاور لگا ہوتا ہے نا.
ہاں ٹھیک ہے جی, ایک ان کی اسپیشل پوزیشن بن گئی ہے, ٹھیک ہے وہ اس طرح ہو گیا اس میں. اچھا دیکھیں نا, اگر یہ چیزیں جو گورننس ہے مطلب اپنی ایک روٹین پہ چل رہی ہو, اپنے ٹریک پہ چل رہی ہو, تو ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا.
ہاں جی ان کی ضرورت نہیں ہے نا,
کیونکہ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, ہم باہر جاتے ہیں تو कोई एमपी होता है वो आके बैठा है, अपना बैठा है, कोई इसे पूछ नहीं रहा है, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह है वो, कोई इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं। यहाँ तो ये बड़े एक ख़ास किस्म के वीआईपी बने होते हैं हर वक्त। तो एक चीज़ यकीन है डेवलप हो गई है भी, लेकिन अगर हम एक कोई एक एमपी है, कोई एक एमएनए की बात नहीं है
जी,
बात देखें पोलिटिकल पार्टी की है पूरी, तो क्या। लेकिन जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो एक एंटिटी है, पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, एक उसे एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, अगरचे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, लेकिन उन्हें ये सोचना है ना कि ये चीज़ें कैसे करनी है।
जी जी
ठीक है ना, देखें ना, ये एक आदमी जो है जिसे जिसको बेचारे को थाने का मसला है, जिसको कुछ ही कोई सरकारी काम जिसका रुका हुआ नहीं हो रहा है, वो तो आके इसी काम के लिए फिर आएगा ना, उसके जब ये काम हो जाएंगे तो फिर वो दूसरे कामों के लिए आएगा कि भाई ये करें इस तरह करें, फिर वो उनके बारे में सोचेगा ना। एक ये भी समझे हमारी पॉलिटिक्स की, हमारे पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीज की एक ये वो है, इस तरह की पॉलिटिक्स की है उन्होंने और उसे तब्दील नहीं किया कि उन्होंने लोगों को एक ऐसे गोरख धंधे में फंसा दिया कि जिसमें से निकले ना और बाद में हमसे पूछे ना आगे कि क्या हो रहा है। और यही वो है ना, क्या पॉलिटिकल सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या अग्री नहीं करती कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए? सब करती हैं ना अग्री, इन प्रिंसिपल,
इन प्रिंसिपल।
लेकिन जब हुकूमत में आती है, जब अच्छा हुकूमत में बाहर बैठी होती है,
एक्सेप्ट फॉर वन पार्टी, सॉरी एक्सेप्ट फॉर वन पार्टी,
विच वन?
पीपल पार्टी।
नहीं शायद से मैं इसकी तो हिस्टोरिकल एविडेंस सारी मौजूद है ना, जब बेनजीर की गवर्नमेंट आई है नवाज शरीफ के बाद 90s में, तो नवाज शरीफ ने जो स्लोगन बनाया था एक, मतलब वो प्राइवेटाइजेशन फॉर द पीपल, ठीक है ना। अच्छा बेनजीर गवर्नमेंट आई, ये सेम स्लोगन चल रहा था प्राइवेटाइजेशन फॉर द पीपल, और मैं हैरान होता था क्योंकि भुट्टो के दौर में जब वो नेशनलाइजेशन हुई तो नेशनलाइजेशन फॉर द पीपल का स्लोगन चलता था।
हाँ।
और बेनजीर ने कंटिन्यू किया इस स्लोगन को।
हाँ, लेकिन उसके उसी के
हाँ
उसी के जेरे साया।
हाँ,
अब आप देख लेंगे उनकी हुकूमतों में कितने कितने नए इदारे बने और कितनी पार्टियां
हुई। बिल्कुल यही बात है। लेकिन इन प्रिंसिपल पीपल्स पार्टी भी अग्री करती है प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करते।
प्रैक्टिकली नहीं करते।
प्रैक्टिकली जब उनकी हुकूमत आती है प्राइवेटाइजेशन का वैसे ही अमल यहाँ पे स्लो है, तो उनके दौर में तो बिल्कुल डेड स्लो हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा फिर ये कि अगर फर्ज करें कोई दूसरी गवर्नमेंट है जैसे नून लीग की हुकूमत है और वो कुछ प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, तो ये पीछे से मुखालफत शुरू कर मुख्तलिफ तरह के जो अपने इन्होंने बनाई हुई हैं, जैसे PIA में इनके ट्रेड यूनियन है, कहीं और है, कहीं और है, वो एक प्रेशर डलवाने शुरू कर देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी तो एक जिम्मेदारी है ना ये कि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी।
जी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल है, और इनको अब तक कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी आप देख लें जैसा कि आपने कहा, बल्कि अब तो वो बड़े ओपनली, अभी आप मैं कुछ दिन पहले इन्होंने एक अपना वो KG हमारा मैनिफेस्टो ये पीपल पार्टी ने ट्वीट किया, उसमें कहीं आपको प्राइवेटाइजेशन, उसमें यही मुफ्ते हैं, वो कहते हैं कि हम इन लोगों को मुफ्ते देंगे, ये करेंगे, मुफ्त सहूलत देंगे, ये वो सबको भर्तियां और सबके लिए नौकरियों का इंतजाम करेंगे। तो देखिये उसमें तो प्राइवेटाइजेशन सिरे से गायब ही होगी। ठीक है, अभी आप जो प्राइवेटाइजेशन की वो चल रही है, एक अटेम्प्ट चल रही है, विच इज गुड। ठीक है, अंडर द रडार
कुछ तो है ना, लेकिन
चले कुछ तो है कहीं से इब्तिदा की, लेकिन आप देख लेंगे पीपल पार्टी जो है अब, और पार्टियां आप उन्होंने उनका कोई ओपिनियन इसके खिलाफ नहीं होगा, लेकिन पीपल पार्टी ओपनली उसके खिलाफ है, वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, गलत है। अब तो ये एक डायलेमा है कि यार वन ऑफ योर बिगेस्ट पार्टी, इट इज अगेंस्ट इट नाउ, इट इज स्क्वेयरली अगेंस्ट इट नाउ। एक और मसला भी है खलील साहब के प्राइवेटाइजेशन में, चूंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि देखें ये जो इकोनॉमिक पूरा एक सिस्टम होता है ना जी, इसको इकोनॉमी में चलाना, इट्स नॉट के सिंगुलर के आप और चीज़ों को वो जो है उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ एक चीज़ से जो है, अब प्राइवेटाइजेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। मेरा एक सवाल बनता है, व्हाट नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन की बात क्या? देखिए एक सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ और वो आपसे कई, आप तो जानते हैं उसका मेरा व्यू इस पर, इस साल इस माली साल हुकूमत तकरीबन 8 खरब रुपए जो है बैंकों से लेके
कर्ज
लेके वो अपना खर्चा चलाएगी।
ठीक है
जी,
करंट
इंतजाम चला रही है,
ठीक है,
बुनियादी तौर पे जितनी भी अभी भी हुकूमत अपने इंतजाम और अपने लोगों को, जितने भी इनके सिविल सर्वेंट्स हैं उनको जितनी भी तनख्वाहें दे रही है वो बैंकों से कर्ज लेके दे रही है। ठीक है,
डोमेस्टिक बैंक।
अच्छा चले आप प्राइवेटाइजेशन कर भी लेते हैं, विच शुड हैपन, आपको उससे कितने, उसके बाद आप क्या करेंगे, उससे 1 खरब रुपए 2 खरब रुपए आगे चले, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम कहते हैं, लेकिन फिर वो जो बाकी पीछे 5-6 खरब रुपए बचते हैं जो आपका खर्चा है उसका क्या करेंगे, क्योंकि वो मैं बात करता हूँ ना लिवायथन, ये तो फैलता ही जा रहा है, ये तो कम नहीं हो रहा
की जो है ना,
हॉब्स की
वो लिवायथन है, बिल्कुल ऐसे ही है।
ये अपने पंजे फैलाते ही जा रहा है, खर्चे कम नहीं हो रहे। आप 4 साल 5 साल पहले, 10 साल पहले जो है आप देख लेके हमारे एक्सपेंसेस कहाँ पे थे, करंट एक्सपेंसेस जैसे हम नॉन डेवलपर्ड, आज देखे कहाँ पे
चाहिए, बिल्कुल ठीक है।
तो मुझे कोई ये गारंटी दे सकता है कि चले यार प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, इससे पैसे भी आपके बच जाएंगे, लेकिन मुझे ये बताए कि फिर उस तरफ से ये जो रन अवे एक्सपेंडिचर्स है, खर्चे, आप इसका क्या करेंगे? फिर जब आपके पास प्राइवेटाइज करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, सो द सिस्टम हैज टू वर्क इन यूनिसन ऑफ ऑल थिंग्स वर्किंग कम्प्लीटली। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो जाए, गुड, फेयर इनफ। अब उसके बाद फिर आप अपने खर्चे भी तो कम करें, और आप तरीका सलीका वो देखें कि आपने अपना वो चलाना कैसे है, इंतजाम कैसे।
बिल्कुल
ठीक है
जी।
तो इट्स अदर पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट।
नहीं, अच्छा, प्राइवेटाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहले तो बर्डन कम करें ना, वो जो कश्ती डूब रही है ना, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो जो कश्ती हुकूमत की, रियासत की डूब रही है इतनी सारी SOEs के बोझ से,
जी जी
ठीक है ना, उसमें अब वो सारे सवार कौन लोग हैं, उससे फ़ायदा कौन उठा रहे हैं। वो अगर आप देखें ना बेन हर फिल्म जो है, उसमें वो एक जो ज़माने में कश्तियाँ होती थी उसके नीचे ग़ुलाम थे जो चप्पू चलाया करते थे,
जी जी,
तो वो लोग यही कर रहे हैं असल में। अब वो सारी SOEs जो हैं उनका पैसा, उन पे जो पैसा लग रहा है, PIA को जो दिया जा रहा है हर साल, रेलवेज़ को जो दिया जा रहा है, स्टील मिल्स को जो दिया जा रहा है, लोगों को बैठे 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 बिठाए तनख्वाहें मिल रही हैं, और जो ये करंट एक्सपेंडिचर हुकूमत का जो बढ़ता जा रहा है, जिस तरह आपने बिल्कुल सही बात की, प्राइवेटाइजेशन उसमें फ़र्स्ट स्टेप होगा। और ये आप, ये तो है बिल्कुल कि ये एक बना हुआ है, और मेरा ख्याल है इसके लिए वो बेसिस मौजूद हैं कि जो डेट रिटायर करना है वो प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसीड्स आएंगी उनसे होगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन एक स्टेप है पूरी गवर्नमेंट को चलाने वाला सिलसिला जो है इसमें, उसके साथ जो चीज़ होनी चाहिए, जैसा आपने कहा, जो साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट है, हजम जो है हुकूमत का, उसे भी कम होना चाहिए, और मैं कहता हूँ 50% कम होना चाहिए उसे। अच्छा, इसी तरह गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, देखिए ना, एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, टैक्सों की तादाद बढ़ेगी, टैक्सों का रेट बढ़ेगा, लोगों पे बोझ ज़्यादा पड़ेगा, तो हो यही रहा है यहाँ पे। ये दोनों चीज़ें, प्राइवेटाइजेशन, सीधी सी बात है, प्राइवेटाइजेशन सारे मसाइल का हल नहीं है
जी।
प्राइवेटाइजेशन के साथ जो गवर्नमेंट का साइज़ है, हजम है, वो भी कम होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, वो भी कम होने चाहिए, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। ये ड्रामेबाजी जो है ना, जो आपने भी, आप भी जानते हैं, मैं कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, हमने उसे उस पर उसको ट्रैक भी करते रहे हैं थोड़ा सा, कि वो अपने इंतखाबी मंशूर में आपने लिख दिया जी प्रेजिडेंसी का खर्चा इतना कम किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा कितना कम, भाई कितना फ़र्क पड़ जाएगा उससे। गवर्नमेंट का साइज़ कम करें, 50% कम करें ना, आए ना ज़रा बताएँ फिर, तो फिर तो प्राइवेटाइजेशन का कुछ फ़ायदा होगा। अगर फ़र्ज़ करें ये सारा कुछ प्राइवेटाइज कर, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, सारा कुछ आपने प्राइवेटाइज कर भी दिया, तो ये इशू तो वहीं का वहीं मौजूद है।
हाँ, तो वो इसे हम वो कहते हैं ना सर, एक असलाह इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिक्स।
हाँ,
तो ये ऑप्टिक्स बहुत करते हैं हमारे लोग,
बिल्कुल
फैसला करने वाले।
हाँ,
लेकिन जो असल मटीरियल है ना, वो वहीं पे खत्म है। अच्छा, एक चीज,
सॉरी, पंजाबी में ऑप्टिक्स का तर्जुमा हम कर सकते हैं, आणिया जाणिया देखो।
हाँ, आणिया देखो तो बिल्कुल।
हाँ जी,
तो वो मुनव्वर ज़रीफ की एक फिल्म थी, शायद आपको याद हो, वो थे वो हंसते आओ थे हंसते जाओ।
हाँ, बिल्कुल
ठीक है। तो यहाँ पे हंसते आते हैं हंसते जाते हैं, लेकिन मसाइल जो है वो बढ़ते जाते हैं, वो वही
और ज्यादा।
तो ये अच्छा, इसमें एक चीज, एक मैं इशू जो आई फॉरगॉट टू मेंशन, क्योंकि हम ओवरऑल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे गवर्नमेंट्स ने कोई थोड़ी बहुत वो दिखाई भी है, एस्ट्यूटनेस दिखाई है कि यार फाइन वी नीड टू गेट रिड ऑफ दीज लाइबिलिटीज, तो वहाँ पे गेस करें कि कौन आता है वहाँ पे फौरन, जो है हमारे मुनसिफ जो है, ठीक है, वो छलांग अच्छा, मार देते हैं बीच में, ठीक है। अच्छा, मैं दो मिसालें देता हूँ। एक तो बड़ी मशहूर मिसाल है वो इफ्तिखार चौधरी साहब की, उन्होंने आते साथ ही उन्होंने कहा कि स्टील मिल, हालांकि वो इट वॉज सोल्ड, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि नहीं खत्म कर दो इस चीज को। अच्छा, मसला ये है कि आपको इशू ये था ना, बहुत से लोग कहते हैं कि वो जो वो प्रोसेस था वो डिफेक्टिव था, और जिस तरीके से तो वही प्रोसेस डिफेक्टिव था, आप गवर्नमेंट को कहो कि इसको दोबारा आप वो करें।
हाँ बिल्कुल
सही है, बिल्कुल आपने सिरे से वो खत्म ही कर दिया।
कोई रूल है अगर उस पर अमल नहीं हो, करें भाई इसको करें सही,
ठीक है। अच्छा फिर दूसरा ये था कि यहाँ पे वो स्टील मिल की जो अच्छी खासी जमीन पड़ी हुई है,
बहुत
ठीक है। अच्छा उसमें सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दे काइंड ऑफ रीच्ड एन एग्रीमेंट, अच्छी बात है। उन्होंने कहा यार कि इस चीज को जो है ना, इस जमीन को यूटिलाइज कर लो, तो ये जो ये बजाय इसके कि नेशनल टैक्स पेयर जो है उनके पैसे तनख्वाह और सब खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो उसी से आ जाए करेंगे, बल्कि उससे हमें फायदा भी हो जाए करेगा। अच्छा अब ये तजवीज आई नहीं थी कि उस वक्त थे, ये कुछ साल पहले की बात है, चीफ जस्टिस थे गुलजार साहब, वो थे भी कराची के।
हाँ बिल्कुल,
तो उन्होंने बीच में जो है वो फौरन आके उन्होंने धोबी पटका मारा कि सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो जो है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको आप कैसे प्राइवेटाइज कर सकते हैं, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो उन्होंने वो धोबी पटका तो मार दिया, लेकिन आप देख लें कि
वो रुक गया,
ठीक है जी। अच्छा और फिर वही चीफ जस्टिस थे, वो खुद डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे होते थे कि जी ये ठेका जो है ये इसको दो कराची में और इसको दे, मतलब यार चीफ जस्टिस का ये काम है, वो ये काम करेगा।
सही।
तो वो मैंने आपको कहा ना सर कि पूरा एक तरफ से नहीं है, आप एक दो तरफ से
काफी पेचीदा हो चुका
है, तो एक दो तरफ से आप ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो तीसरा फरीक जो है वो बैठा हुआ है, वो बीच में जो आके छलांग मारेगा कि ठहर जाओ मैं भी तो हूँ, मुझसे किसी ने नहीं पूछा क्या करना है। तो यहाँ पे पूरा एक प्राइवेटाइजेशन स्मॉल पार्ट जो है ना, एक छोटा सा हिस्सा है पूरे बिगाड़ का। ये इतना कम्प्लेक्स, इतना गुंजलिक सिस्टम बन गया कि इसकी ये जो गिरें खोलने और इसको सही करने में ना वो एकदम नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन आपको पहले ये जो जितने भी इस तरह के लोग हैं, मिसाल के तौर पर अदलिया के लोग हैं, उसमें आपको बावर करवाना पड़ेगा उनको कि यार आप हर चीज में आपके आने की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि आपने कहा कि हुकूमत एक रिट दायर कर सकती है ना कि जी अदलिया हमें बता देंगे उन्होंने किन किन जगहों पे किस फैसले में उन्होंने इख्तियार उनके पास है किस में नहीं है, ताकि हमें भी क्लियरिटी हो, ताकि हम आगे कोई फैसला कर सके। आज तक किसी हुकूमत ने ये रिट नहीं बोल गई।
हाँ है इश्यूज हैं। अच्छा ये जो आपने बात की ना शाहिद साहब, अच्छा ये जो आपने एक बात की थी वो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट वाली भी, और मैं भी ये समझता हूँ कि असल में पहले तो सॉफ्टवेयर सही होना चाहिए, माइंड सेट में कुछ ऐसी चीज़ें बैठी हुई हैं जब तक वो नहीं निकलेंगी ना। अच्छा अब ये जो बात की ना, अच्छा आपने कि वो होने लगा था स्टील मिल की ज़मीन का, फेडरल गवर्नमेंट और जो सिंध गवर्नमेंट है किसी एग्रीमेंट पर पहुँच गया जो भी करना था उन्होंने, अच्छा उसके बाद वो चीफ जस्टिस उसमें कूद पड़े। अच्छा या बाज़ औक़ात होता है कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ होने वाला है उसमें कूद पड़ती है, अच्छा बाज़ औक़ात कोई ट्रेड यूनियन कूद पड़ती है, बाज़ औक़ात कोई एनजीओ कूद पड़ती है, वो रिट लेके चले जाते हैं। अच्छा होता पता क्या है, होता ये कि अच्छा वो आके बता रहे होते हैं कि भाई मैं ज़्यादा ऑनेस्ट पाकिस्तानी हूँ, मैं ज़्यादा मुखलिस हूँ पाकिस्तान के साथ, तुम डिसऑनेस्ट हो, तुम सही नहीं हो, तुम चोर हो।
जी बिल्कुल।
अच्छा ये रेस जो एक लगी हुई है ना, अच्छा हर एक यही समझ रहा है, जबकि तरीका यही है, जब कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स भी है, तो भाई जो जिसका काम है, जो जिसका मैंडेट है, एक तो हो गया लोगों ने मैंडेट पॉलिटिकल पार्टीज को दिया, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो मौजूद हैं, उनका जो मैंडेट है उन्हें अपने उसके अंदर रहना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। वो अच्छा हर कोई ये समझ रहा, हर इदारा बैठ के ये समझ रहा है ये पॉलिटिशियन डिसऑनेस्ट है। अच्छा बिल्कुल ये एक तरीका बन गया हुआ है हर कोई, जब एक वो दानिश्वर भी अगर बैठे हैं ना टीवी चैनल पे टॉक शो में, या एनालिस्ट बैठे वो भी सोच रहे हैं कि ये हुकूमत डिसऑनेस्ट है, बिल्कुल सबसे बड़ा ऑनेस्ट मैं हूँ, बस मैं आ जाऊँगा मैं सारा कुछ सही करूँगा। अच्छा वो चीफ जस्टिस बैठा होगा चाहे किसी हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, अच्छा वो भी ये बैठा, ये जो है ना इन्होंने बेच दिया, खा गए ये, ये मैं मुझे करना चाहिए सही,
मजबूरी सोच है
जी बिल्कुल, ये एक सोच बड़ी ही अच्छा, ये सोच आगे नहीं चलने देती चीज़ों को
जी,
देखे ना हर कोई अगर एक काम में टांग अड़ा देगा आके तो वो काम आगे नहीं चल सकता है। और सीधी सी बात है कोई भी चीज़ इंसानी मामलात में कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, इसी तरह प्राइवेटाइजेशन है, अच्छे से ही चलें छोटी सी एंटिटी थी कर दी उन्होंने प्राइवेटाइज, जैसा आपने कहा किसी के नज़र में भी नहीं थी, कोई बड़ी नहीं थी, कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे, लेकिन जब भी नज़र जाती है, जब भी हाथ डालते हैं वो PIA पे, रेलवेज पे या स्टील मिल्स पे हाथ डालते हैं, कोई ना कोई कूद पड़ता है बीच में आके ना,
हाँ जी,
तो वो इशू खड़ा हो जाता है वहाँ पे। अच्छा पता नहीं कि अच्छा एक ये भी है ना, वो एक मुझे नहीं पता कि आपने एक घरों में पहले होता था, पहले के जो घर थे, अब तो एक वो छोटा सा बाहर एक कंज्यूमरिज्म आ गया है कि नई से नई चीज़ें आप ख़रीदते हैं और पुरानी चीज़ें निकालते भी जाते हैं, लेकिन पहले होता था सब कुछ संभाल के रखा जाता था, पिछला भी हमें ना पढ़ा होता था, चीज़ें पढ़ी रहती थी, नहीं निकालना। एक उसके साथ अपनाइयत होती थी या जो भी आप कह लें, उससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
हाँ जी।
अच्छा, एक कहीं ये भी मौजूद है, लोगों में भी मौजूद है, मैं हैरान होता हूँ देख के ना लोगों को भी। अच्छा भाई, ये तो हमारे कौमी असासा है, इसको आप कैसे बेच देंगे?
हाँ जी।
और भाई नहीं बेच रहे, वो कारोबार होना है।
बिल्कुल सही
है ना। अच्छा, मुझे मुझे एक इस पर भी ना लतीफ़ा याद आता है। एक आदमी तो उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, तो उसको ख्याल आया चलो जी, उसने एक मुर्गी खरीदी, उसको पकाया, पतीला रख के वो आके एक जगह बैठ गया बेचने के लिए ना। अच्छा, वो उठा के ना वो डोई से बीच में से देख रहा है, अच्छा कभी रान आई है, कभी कुछ आ रहा है। अच्छा, उतनी देर में एक आदमी आ गया, उससे पूछता है कि भाई क्या पकाया है? अच्छा, वो देखा था तो उसने रान आई हुई थी, वो एकदम बंद करना, कुछ नहीं पकाया। तो हमारे यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन का ना बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, वो जब भी कोई चीज़ बेचने लगते हैं, अच्छा एकदम ख्याल आ जाता है ये तो नहीं बेच, किसी को ख्याल आ जाता है।
हाँ, किसी को ख्याल आ जाता
है भाई ये कैसे बेची जा रही है, ये तो नहीं बेचनी चाहिए।
ये बिल्कुल वही खलील साहब, मैंने कहा ना, सोच का बिगाड़
जी
और माशरे का बिगाड़, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब HEC की वैसे वो तो प्राइवेटाइज तो कर दिए, लेकिन जो उसमें मुझे इंटरेस्टिंग बात पता लगी है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ जो है वो मेन जो बिल्डिंग है,
अच्छा,
और कुछ वो मशीनें वगैरह, वो जमीन जो थी जो उसका सबसे वैल्यूबल हिस्सा था, वो पास ही रखी हुई है।
अच्छा,
एक कौमी मुफाद का इदारा है, उसने उसमें टांग अड़ा दी कि नहीं ये जमीन हमारे पास ही रहेगी।
अच्छा, इस तरह की डील है।
हाँ, इस तरह की डील,
चलें
ठीक है जी। हाँ, उसमें उसमें भी मतलब वही बात आई ना कि मुफाद है अपने
जी,
और अजीब व गरीब किस्म के मुफाद है। अच्छा, तो ये बिल्कुल आपने सही कहा ना कि यहाँ पे अब अक्सर मैं सुनता हूँ और ये मैं देखता हूँ मैं सोशल मीडिया पे कि लोग रेमिनिस कर रहे होते हैं, सो यार वो तुम्हें बता 1980 में जो है डॉलर जो था वो सिर्फ 8 रुपए का था। क्या वक्त था भाई, क्या वक्त था यार, क्या था उसमें, ठीक है, व्हाट वाज सो डिफरेंट अबाउट इट। ठीक है, मे बी इतने इश्यूज ना हो, लेकिन ये क्या तरीका है कि यार वो जिस तरह आप उसको लेके बैठ गए हो कि एक वक्त में हमारा जो है डॉलर 2 रुपए का और 8 रुपए का मिलता है, यार वो वक्त होगा, अब डिफरेंट वक्त है। लोग फंडामेंटल को नहीं समझते। अब आप किसी से बात कर लें, मैं लाहौर गया हूँ, लाहौर से आप भी हैं ना, अब मैं बहुत से लोगों से बात की, पढ़े लिखे लोगों से, ठीक है, लाहौर इज नाउ लिटरली अ गैस चेंबर, ठीक है, धूप वहाँ पे लगती नहीं है
बिल्कुल,
तो वहाँ पे लोग खुश हो रहे होते हैं कि लाहौर जो है वो जो है इस्लामाबाद से ज्यादा ठंडा हो गया। मैं कहा खुदा के बंदो, वो पोल्यूशन तुम्हें मार रही है और तुम खुश हो रहे हो। अच्छा, वो आप लाहौर में जाके जितने लोगों से मिले ना, मैंने बहुत से लोगों से मुलाकात की है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका हाल है, वो कहते हैं यार उसने वो शहबाज शरीफ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, इस तरह कोई काम। अच्छा, क्या काम किया, देख यार उसने कितने रोडें बनाई हैं, कितने अंडरपास, कितने ओवरपास, कहते हैं ये इतना तरक्की वाला काम किसने किया। अब देखिए, ये सोचनी है कि यार इस तरक्की से आप तरक रहे हो, ठीक है, आप उल्टा जो है आपके वो गैस चेंबर बन गया आपका पूरा शहर, रहने के काबिल नहीं रहा।
बिल्कुल भी ऐसे ही है,
इस्लामाबाद का देखने यही हाल हो रहा है,
हो जाएगा,
हमारे सामने हो रहा है।
हाँ,
अभी भी हो रहा है। कल परसों इधर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो लाहौर के करीब करीब ही था।
अच्छा,
बहुत से जगहों पे इस्लामाबाद में तो देखें, आपका जहाँ पे सोच और इतनी महदूद होगी और इतनी मिसगाइडेड होगी, तो वहाँ पे आप कोई आप तरक्की का वो नहीं रख सकते। आप वो एक वो कहना कि यार होप कि चलो यार मे बी समथिंग वुड बी बेटर, कल को कुछ बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, ठीक है, तो नहीं होंगी। हालांकि ये आपकी बात कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 1970 से जब से स्टडीज आई थी कि जी आपके पेट्रोल लेवल में जितना लेड होगा उतना ही आपके लिए डेंजर है
जी।
तो उन्होंने पेट्रोल लेवल वो जो आप उसकी क्वालिटी है उसको साफ किया। अब शहरों में जो ज़्यादातर पोल्यूशन होती है वो ये व्हीकलर पोल्यूशन है ना, और जो हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं बड़ा लो क्वालिटी का, उसमें ईरान से स्मगल शुदा डीजल और तेल भी अच्छा खासा है, तो उससे पोल्यूशन नहीं फैलेगी, क्या फैलेगा। तो आप एक रेगुलेशन, इतने 120 से ज्यादा आपके रेगुलेटरी एजेंसी हैं, तो उनके जरिए इन्फोर्स करवा देना, ठीक है,
बिल्कुल,
आप क्वालिटी ऑफ फ्यूल ठीक करवा देना, तो 25-30% आपका मसला तो वैसे ही हल हो जाएगा।
सही।
लेकिन हमारे यहाँ पे हाल ये है कि जी मस्नूई बारिश करवा दो करोड़ों की।
सही। अच्छा, वो हल नहीं है, बाहर लाहौर का तो बिल्कुल डिफरेंट है, किसी और दिन कोई बात होगी तो फिर मैं करूँगा उस पर। लाहौर में स्मॉग ख़त्म नहीं होने लगी, क्योंकि जो जहाँ से ये पैदा हो रही है ना स्मॉग, उसे कोई एड्रेस नहीं कर रहा है बिल्कुल। और वो है लाहौर के नवाह में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, फर्नेसेस, भट्टियाँ लगी हुई हैं, और उनमें रात के वक्त वो टायर जलाए जाते हैं जो स्क्रैप टायर है, और स्क्रैप टायर इम्पोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में, اور یہ ہے اصل ریزن وہاں پہ لاہور میں تو اسموک کی. بہرحال ہم واپس آتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف. اچھا ایک بات بڑی اچھی ہوئی ہے پہلے گفتگو میں کہ جیسے ہم نے ابھی بات کی آپ نے بھی کہ کچھ این جی اوز بھی ہیں, کچھ بائیں بازو کے گروپ ہیں, اچھا پھر ٹریڈ یونینز ہیں, کچھ ویسے ٹریڈ یونین سے ریلیٹڈ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں باہر جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں, پرو لیبر جو تنظیمیں ہیں. اچھا ان کے ساتھ کبھی سمجھیں جیسے کہ ایک کوئی فرض کریں پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا جانا ہے تو پی آئی اے میں جو ٹریڈ یونینز مختلف بنی ہوئی ہیں, اچھا ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنا, ان کو ایجوکیٹ کرنا اور انہیں بتانا کہ بھائی یہ اس طرح ہے اس طرح ہے اور یہ چیزیں ایسے ہوں گی, تو کیا یہ ایک اس سے وے آؤٹ نکل سکتا ہے؟ کیا ہم اس کو مخالفت جو ہے اگر یا وہ اس کو وہ صحیح طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ بھائی اس کا پرائیویٹائز کیا جانا کیوں ضروری ہے, تو اس میں کوئی مدد مل سکتی ہے؟
مدد اس وقت مل سکتی ہے جب آپ کا نظام اچھا ہو. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ ہمارا نیشنل فرٹیلائزر کمیشن
جی
1970s کا بنا ہوا ہے, اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو اسی طرح بڑا, کیونکہ اس میں تو دھڑا دھڑ بھرتی کیے گئے تھے جن کی ضرورت بھی نہیں تھی پاکستان کے ہر ادارے کی طرح, تو اس میں تقریباً 20 سال پہلے
جی
جنرل پرویز مشرف کے وقت میں انہوں نے اسی طرح جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان سے یار بات چیت کا آغاز کیا کہ دیکھو آپ یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, چلیں آپ کا وی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے ایشوز ہیں وہ یہ, تو آپ کو ہم ایک ہینڈسم, مجھے ایک وقت میں گولڈن ہینڈ شیک پیکیج آیا,
ہاں جی بالکل,
کہ وی ول گیو یو ہینڈسم پیکیج لیکن یو ہیو ٹو لیو دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, تو بڑے طریقے سے انہوں نے تو بات ہو گئی اور اس پہ اگریمنٹ بھی ہو گیا. اچھا اب ہوا کیا, یہ ابھی ایک سال پہلے پتہ لگا. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا حکومت کا, میں انتظام کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس وقت گولڈن ہینڈ شیکس لیے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ٹھیک ہے ہمارا یہاں سے کام ختم ہو گیا.
اچھا
وہ ڈاؤن سائزنگ والی بات, انہوں نے اچھے خاصے بڑے بڑے پیکیجز لیے. ابھی ایک سال پہلے پتہ لگا آڈٹ ہوا کہ وہی لوگ جو ہے دوبارہ ادھر ہی اپنے عہدوں پہ کام کر رہے تھے.
نہیں دوبارہ ہائر ہو گئے, وہ
ادھر ہی تھے ہائر ہو گئے ہیں یا پھر اسی کنٹینیوٹی میں تنخواہیں لے رہے ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں, پیکیجز بھی لے, وہ پیکیجز بھی لے لیے انہوں نے. تو دیکھیں آپ ان سے بات تو کر لیں گے, دس از اے گڈ وے کہ آپ سب سے بات کریں, لیکن آپ کے ساتھ پھر نظام آپ کا جو کنٹینیو آپ نے انشور کرنا ہے کہ دیٹ از امپلیمنٹڈ اور اس کو کوئی ابیوز نہ کرے. یہاں پہ جو ابیوز بہت ہے نا
رائے سر, ابیوز تو دیکھیں نا جو بھی گورنمنٹ اتھارٹی کنسرن ہے اس نے ابیوز ہونے دیا تو ہوا ہے نا, ذمہ داری تو گورنمنٹ کی تھی نا. اگر وہ ایک پورا ایک ارینجمنٹ ہوا اور گولڈن ہینڈ شیک ہوئے, لوگوں کو پیمنٹس کر دی گئی, تو انہیں وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا, یہ گورنمنٹ نے دیکھنا تھا نا.
جی جی
خود تو دیکھے نا, کوئی بھی آدمی خود تو نہیں آئے گا, اس خود تو نہیں چھوڑے گا مجھ سے.
دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اسے ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں یہی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں آپ اوور آل اس کے آپ کو لے لیں ان ایگریگیٹ, سم ایگریگیٹ جو میں لوگوں سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر حکومت ایک کام نہیں کر سکتی, آپ کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے, تو آپ کیوں اس چیز میں جو ہے کود پڑتے ہیں؟ اب میں ایک چھوٹی سی اس سے آپ کو یہ جو ہے نا اس سے عکاسی ہوگی کہ کتنا برا حال ہے ہماری گورننس کا. حکومت کے جو خرچے ہوتے ہیں 15 خرب 14 خرب کے, اس میں سے آڈیٹرز مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس صرف اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم صرف اس کا 15% آڈٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں کرنا بھی دیا جائے.
اچھا
سال کے اندر 15-20% دیٹ میکسیمم, باقی جو 80% ہے کہتے ہیں اس کا آڈٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس اتنے زیادہ اتنا واسٹ نیٹ ورک ہے ہم کر ہی نہیں سکتے. تو وہ اور کچھ ادارے ہیں وہ تو کرنے بھی نہیں دیتے نا, وہ اپنے قریب کسی کو پھٹکنے بھی نہیں دیتے. تو دیکھیں اس حال میں
صرف وہی ادارے نہیں بلکہ دوسرے ادارے بھی, سپریم کورٹ کا دیکھ لیں
آپ,
آڈٹ کا جو مسئلہ چل رہا تھا ابھی پتہ نہیں دوبارہ تو نہیں اٹھایا ابھی, لیکن وہ عمر ادا بندیال جب تھے
جی جی
یہ مسئلہ چل رہا تھا تب بھی.
تو دیکھیں وہی بات آ گئی خلیل صاحب کے, آپ ایک کام کرنا ہے, آپ فیکٹریاں چلانے کا, آپ کو بزنس چلانے کا, آپ کو یو ڈی سی ایل اسٹیل مل چلانے کا, پی آئی اے چلانے, ریلوے چلانے کا بہت شوق ہے, لیکن شوق کے ساتھ آپ جو ہیں وہ تھوڑی سی کیپیبلٹی بھی تو رکھیں. کیپیبلٹی آپ کے پاس ہے نہیں. اچھا اب ریلوے کا ادارہ ہے نا جی, ریلوے کا ادارہ ہے, آپ چلے جائیں مغل پورہ کی ورک شاپ ہے لاہور میں, ادھر رسال پور میں اتنی بڑی ورک شاپ بنی ہوئی ہے, آپ وہاں سے گزرے نا اور وہ ریلوے کا سارا ایریا جو ہے قبضہ ہوا ہے, اس پہ دکانیں سب کچھ بنی ہوئی ہیں. اچھا یار یہ دو اتنی بڑی ورک شاپس ہیں, آپ کے پاس انجینئرز ہیں, ریلوے والے انجینئرز وغیرہ ٹیکنیکل کوالیفائڈ لوگ ہائر کرتے ہیں ایف پی ایس سی کے, جتنی بھی نئی بوگیاں نئے انجن آتے ہیں وہ باہر سے بن کے آتے ہیں. ابھی جو نئے انہوں نے ابھی وہ ٹویٹر پہ ان کا جو آج کل چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے وہ سیکرٹری بھی ہے ماشاء اللہ, وہ دو پوسٹیں اس نے ایک ساتھ نہیں ہوئی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا
صحیح
ایز پر دا لا, لیکن ہے آپ کے سامنے. اچھا वो बड़े फखर से बता रहा हूँ उस दिन, वो कोई लग्जरी कोचेस उसने वो कहा है कि वो, हाँ
जी ट्विटर पे देखा
हाँ जी
मैंने
ट्विटर पर,
देखा।
कि लग्जरी कोचेस। अब ये लग्जरी कोचेस यार यहाँ पे कौन लग्जरी कोचेस में बैठेगा? और दूसरी बात ये है कि आप कौन से कारनामा किए, ये तो आपने चाइना से मंगवाई है। अच्छा, सीडीए ने अभी बसेस जो मंगवाई हैं, लाहौर की मेट्रो होगी, कराची की ग्रीन लाइन होगी, सीडीए वाले इधर अपने चला रहे
सही।
हैं, ये सारी बसेस जो आ रही हैं ये पाकिस्तान में एक भी नहीं बनती, ये बाहर से आ रही हैं। चलो ठीक है बाहर से है, मैं ये नहीं कहता, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन यार आप बाहर से मंगवा रहे हैं, अभी जब खराब होगी ना तो ये खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कहेगा कि
कोई
यार
कोई नहीं
इसकी
होगा,
सर्विस
सही
करने
कहा,
वाला कोई नहीं
बिल्कुल
है।
सही है।
तो देखिए ये इंतजाम है, आप एक काम, यू हैव टू थिंक थ्रू दिस थिंग्स। सही है, आपको ठेके पकड़ाने का बड़ा शौक है।
अच्छा वही देखे ना, एक चीज़ जो ये लग्जरी कोचेस की, मेरे मुझे कुछ ऐसा याद पड़ रहा है, लग्जरी कंटेन या कैफ़े इस तरह की भी कोचेस कुछ आई हैं, और वो बड़ा उसको करें, देखें जी हमने ये सर्विस इंट्रोड्यूस करवा दी, मैंने लिखा था ट्विटर पे, लेकिन वायरल कौन देखेगा उसे, कि भाई पहले जो दूसरी सर्विसेज दे रहे हैं उनको तो सही कर लें
उनको
आप,
सही कर
जो
लें,
बेड़ा गर्क किया हुआ है सारा, गाड़ियों में सीटें सही नहीं हैं, खिड़की शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं, लेकिन लोग मजबूरी में सफ़र कर रहे हैं। बहरहाल जो प्राइवेटाइजेशन समझे, बाज़ औक़ात यूँ लगता है जैसे एक दलदल बन चुकी है, और इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन निकलना तो है ना, तो क्या हो सकता है।
हो ये सकता है कि एक तजवीज़ उसमें यह है कि ये इतनी बड़ी दलदल ऑनेस्टली है नहीं जितना इसको बनाया गया, तो आप पहले से इसका इंतज़ाम कर ले। मिसाल के तौर पे एक तजवीज़ जो है वो ये है, जो मैं पर्सनली मैं
जी
समझता हूँ, वो ये है कि आप बजाय इसके कि ये खामोशी से प्राइवेटाइजेशन के एक दिन मुकर दे कि जी हम कुछ करने जा रहे हैं, मेक इट ओपन प्रोसेस। आप एक अखबार में जिस तरह करोड़ों के अरबों के इश्तहार ये वैसे ही देते हैं,
हाँ नहीं
एक
चलते
इश्तहार
रहते
दे
हैं।
दें कि जी गवर्नमेंट इंटेंड्स टू प्राइवेटाइज ऑल दीज, ठीक है, उसके साथ ये एक टाइम फ्रेम लगा दे कि दिस इज मंथ हो गए 2 मंथ, जिसको इतराज़ है वो आ जाए। सही है, साथ ही आप कोर्ट्स को भी ये कहें कि जी आप टाइम फ्रेम रख लें, इनफैक्ट आप, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही इन्वॉल्व कर लें कि जी आप बैठ जाएं कमीशन में, जो इतराज़ आते हैं उनको देख लें। सही है, ताकि 1 महीने 2 में हम इन सब इतराज़ात को हम एड्रेस करें एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। होगा ये कि जब ये सारे इतराजात और इस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से एड्रेस हो जाएंगे ना, तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा, फिर कल को कोई कोर्ट्स भी जाएगा ना तो वो कहेंगे कि भाई उसमें तो उन्होंने लिखा हुआ था कि आप आगे जो इतराज़ करना है कर लें, अब आप क्या करने आए हैं, विल बी डिसमिस।
हाँ
हमारे यहाँ पे होता है, अब देखें इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करते हैं, खामोशी से कर देते हैं, वो फिर साल बाद जो है कोई उठ के चला जाता है जिसको पता लगता है कि वही है, और कोर्ट्स कहते हैं वो एक उनकी 1843 के जी ह्यूमन राइट्स, तो बस जी उसमें वो पकड़ लेते हैं उस पिटीशन को लेके आएंगे जी आपने किस तरह प्राइवेटाइजेशन की। सो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन उसका जो वो तरीका कार है ना उस पर थोड़ी सी सोच करें कि यार ये क्या, ये जो मसाइल आते हैं इसको
सही।
किस तरह काउंटर किया जाए, और किस तरह, और वो एक ही तरीका हो सकता है कि ट्रांसपेरेंटली आप इस चीज़ को ओपन रखें कि हम इस इदारे की निजकारी कर रहे हैं। सही है, किसी को
जी
इतराज़ है आ जाए, अभी 1 महीना इनको देते हैं,
सही।
आ जाए इतराज़ है आ जाए, हम इसको एड्रेस कर लेते हैं, और उसमें जो है जब वो एड्रेस करने वाला है उसमें फिर आप बिठाएं जजों को भी, ताकि इनका भी जो है मसला ख़त्म हो जाए। सही है, कल को फिर आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, तो मेरा ये वो है।
अच्छा वो तो एक मेरे ख्याल हो गई है, लेजिस्लेशन अभी हुई है जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया है, कि प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक जितने भी कोई भी ग्रीवेंसीज हैं, कोई भी उसमें आप पिटीशन करना चाहते हैं, कोई है इशू, तो आप वो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे।
हाँ
अच्छा
जी
फाइनल उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, क्योंकि बाहर उसको नहीं निकाला जा सकता, एक जो फाइनल अपील जो करनी होती है आपने,
जी
तो
जी
एक तो ये कर दिया हुआ है, ये चीज़ चले एक अच्छी हुई है। मैं समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन के अमल को थोड़ा सा ये एक महमीज करती है, आगे बढ़ाती है, एक इशू को हल करने की कोशिश की है, कि जी वो पहले हाई कोर्ट में चले जाएंगे, वहाँ पड़े रहेंगे कितने साल वो केस, और फिर वहाँ से होगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला
सुप्रीम कोर्ट
जाएगा,
चले गए,
ट्रिब्यूनल उससे बड़ा एफिशिएंटली बड़ी जल्दी उसको ट्रीट करके, जो भी होगा अगर किसी ने जाना होगा सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अच्छा एक चीज़ जो इसमें है कि प्राइवेटाइजेशन, वैसे तो कई हल कई चीज़ें जहन में आती हैं, जैसे आपने बात की, मुझे याद पड़ता है ये कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की थी। अच्छा क्या होता था, बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल दीज एंटिटीज बिलोंगिंग टू दिस सेक्टर स्टैंड नेशनलाइज्ड,
हाँ जी
एक ऑर्डर आ गया। कुछ ऐसा तो कर सकती है पार्लियामेंट भी। देखिए ना, अगर जो इस ये एक दो सालों से चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात चल रही है, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का प्राइवेटाइजेशन करने के इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन को हिस्सा बना सकते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी का, और फिर पार्लियामेंट में जाकर वहाँ से एक एक एक्ट पास कर दें ऐसा। और उसमें जैसे आपने ये बात की कि ये सारी चीज़ें करके और एक एक बिल्कुल उसमें मतलब जैसे वो होता है ना कि एक टाइम पीरियड दे देंगे, इतने टाइम पीरियड में ये एंटिटीज़ हो जाएंगी, एक लिस्ट बना दें ना, लहदा लहदा मुख्तलिफ लिस्टें, ठीक है, जो ज़्यादा बड़ी एंटिटीज़ हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन जो छोटी छोटी हैं उनको आप इतने अरसे में करें, ख़त्म करें, और इतने अरसे में ये सारा कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा।
जी वो हो सकती है खलील साहब, लेकिन बात वही पे आती है ना, अभी मैंने आपसे जिक्र किया, अभी आपने कमीशन के इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन वालों ने अपना अपेलेट ट्रिब्यूनल बना दिया
जी,
चले दे टुक केयर ऑफ द हाई कोर्ट्स,
हाँ जी
आपने वो तो कर लिया, लेकिन वही फिर बात वही पे आ गई ना कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज हो सकती है ना।
हाँ नहीं, वो तो देखिए ये तो अब लीगल एक तरह से
इशू है ना, है
नहीं कर सकते।
व्हाई कुडंट यू थिंक अबाउट इट, देखें सुप्रीम कोर्ट में एक चीज जाती है तो आपका क्या, वो इतनी जल्दी कोई इशू ये हल नहीं होता, वो फिर सालों पड़ा रहेगा। तो यार आप सुप्रीम कोर्ट के कुछ उनको भी साथ मिला लो,
करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा,
उनको रखें यहाँ पे कि मसला ही खत्म हो,
सही है,
ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट को ये कहें कि यार आपको जिसने भी आना है हमारे साथ एक जज बिठा दे एक दो, ठीक है, वो देख लें इतराजात को, अगर उनकी कोई बनती है नहीं, अगर नहीं तो डिसमिस कर ले,
सही है,
ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी,
सही है,
सही है। तो फिर उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा ना, अब आपके एक वे छोड़ा हुआ है, आपने फिर वही एक लकुना तो छोड़ दिया।
अच्छा नहीं, वो लकुना नहीं है, उसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज वो वही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा जाके, क्योंकि आप जो एक लास्ट मतलब जो कोर्ट ऑफ अपील है ना, एक तरह से उसको आप निकाल नहीं सकते ना, वो उसके बगैर नहीं चल सकता है,
तो सर कोर्ट को इधर ही ले आएगा, इधर ही अपील कर
ले, ये इसमें नहीं, वो यकीन आपको वो देना पड़ता है हर तरह के, आपको पता है जितने भी इस तरह के ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, इंक्वायरी कमीशंस बनते हैं, उन सब में एक फाइनल मतलब वो अपील के लिए रखा जाता है, वो गुंजाइश उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं बहरहाल। लेकिन ये कि पार्लियामेंट चाहे तो इन सारे इशूज़ को बड़ा एफिशिएंटली बड़ी तेज़ी के साथ एड्रेस करके प्राइवेटाइजेशन के अमल को बड़ी जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन वही है कि विल है उनके पास, सोच है उनके पास, लेकिन किसी का कंसर्न नहीं है ना,
कंसर्न
किसी का जा कुछ नहीं रहा, हो क्या रहा है अल्टीमेटली, जैसे ये रेलवेज है, स्टील मिल्स हैं, PII है, इनको जो हर साल जो पैसे दे रही है हुकूमत, वो किसकी जेबों से जा रहे हैं, वो शहरियों की जेबों में से, किसी पॉलिटिशियन की जेब में से तो नहीं जा रहे, किसी ब्यूरोक्रेसी की जेब में से नहीं जा रहे हैं।
तो देखें डॉक्टर साहब, फिर बात वही आ जाती है ना, चले लेजिस्लेशन कर भी लें, इम्प्लीमेंट करने वाला फिर मसला आएगा कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा। अब वन एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें अभी हम बात करते हैं उसके के ये जो हमने कि जी ये हाई कोर्ट्स में, अभी आपने बात की ना केसेस कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में जो केसेस 10-10 साल 15-15 साल फंसे होते हैं, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, एंड सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं दे आर बाइंडिंग अपॉन लोअर कोर्ट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, ये पुराना है, 90s का एक डिसीजन है कि हाई कोर्ट जो है 6 महीने से ज्यादा मुकदमा नहीं चला सकती, और अगर चलाएगी भी तो जज को लिखना पड़ेगा इन रीजन के क्या वजह कि 6 महीने से ज्यादा। आज तक कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई
कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं हुआ,
बिल्कुल सही।
तो सर देखें आप कोई भी रूल बना लें, पार्लियामेंट आ जाए लॉ बना ले, लेकिन मसला ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो फिर असल चैलेंज है। रूल्स यहाँ पे बड़े हैं, आप किताबें उठा के, मैंने कहा ना जी पढ़े इनके रूल्स रेगुलेशन पढ़े, आप कहेंगे वाह वाह ठीक है, बड़े आला दिमाग है ये तो, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा।
हाँ आपकी बात सही है, देखिए ना वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दलदल है, कि दलदल से बैठ के आप ऊपर बैठ के सोच तो लेंगे मैं ऐसे कर दूँ मैं ऐसे कर दूँ, लेकिन जब तक आप हाथ पांव नहीं मारेंगे आप दलदल से नहीं निकल सकते, प्रैक्टिकली जब तक आप कुछ नहीं करेंगे आप दलदल से नहीं निकलेंगे।
हाँ।
तो शायद साहब हमारा आज का जो टाइम है ख़त्म हो रहा है इस वीडियो का, आप कोई और बात कहना चाहते हैं ऐड करना चाहते हैं तो?
नहीं जी बस डॉक्टर साहब, मैं प्राइम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और वी हैड अ वेरी फ्रूटफुल टॉक, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी रहेगी। और बस मैं ये कहूँगा कि आखिर में कि प्राइवेटाइजेशन इज बट ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल,
जी बिल्कुल,
वी हैव टू गेट द होल थिंग राइट, नॉट जस्ट प्राइवेटाइजेशन,
सही है,
तब भी कहीं जाके आपकी चीज़ें जो है सही होंगी। थैंक यू।
नहीं आपसे फिर भी बात होगी, क्योंकि हमारी ये जो वीडियो सीरीज़ है प्राइम इंस्टीट्यूट की मुकालमा सबके साथ, अभी तो हम निज कारी में देर हो रही है इस पर गुफ्तगू करें, लेकिन हम और जो मौजूदात हैं जैसा आपने कहा कि इकोनॉमी का एक हिस्सा है ये प्राइवेटाइजेशन, تو دوسری چیزیں جو ہیں اکانومی میں اور بھی ان پہ بھی ہم بات کریں گے. بہت شکریہ شاہد صاحب ٹائم دینے کا.
ہاں جی
تو آج کی ہماری جو ویڈیو سیریز جو ہماری ہے مکالمہ سب کے ساتھ, ہم اسے یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے مہمان کے ساتھ اسی ویڈیو سیریز کو لے کر پھر دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے. شکریہ.